नमस्ते। सावित्री वेद में हम लोग बुक 10 कैंटो 3 हमने एक भाग पढ़ा था जहां मृत्यु डेथ सावित्री को बार बार ये बता रही है कि संसार केवल एक मिट्टी है, मिट्टी का खिलौना है और मैंने ही इसकी रचना की है। उसका प्रमाण ये दे रहा है कि देखो मैंने रचना की है ना, इसलिए मैं इसको तोड़ देता हूँ कितने सरलता से। और भगवान ईश्वर एक उच्चतर पॉसिबिलिटी ये संभव नहीं है। और है भगवान अगर तो इस संसार के परे है, तो व्यक्ति अगर भगवान मानता है तो मुझे कोई उसमें ऑब्जेक्शन नहीं है, लेकिन वो चला जाए फिर वहां पर। लेकिन इस संसार में दिव्यत्व को स्थापित करना, वो भी इस आधार पर, जड़ तत्व के आधार पर। अब देखिए मृत्यु क्या कह रहा है। अब हम लोग जब बाहर से जीवन को देखते हैं तो हमको तो केवल शरीर ही दिखाई देता है ना। कोई भी चीज संसार में जड़ के ही बेसिस पर इवॉल्व कर रही है। थॉट्स हैं, थॉट्स ब्रेन को इस्तेमाल करे, अगर ब्रेन इंस्ट्रूमेंट नहीं रहेगा तो थॉट ये रूप नहीं ले सकते। भावनाएं हैं, वो हृदय की बीटिंग्स के थ्रू वो प्रकट हो रही हैं। हमारी सारी एक्टिविटीज विल है, अगर उसको एक्सप्रेस करना है तो वही सारी कर्म इंद्रियां, ज्ञान इंद्रियां जिसकी बात सांख्य करती है, इन सब के माध्यम से ये सारे उपादान हैं जिनके द्वारा जो हमारे अंदर सोल है, जो स्पिरिट है, वो अपने को एक्सप्रेस करने की चेष्टा करती है। लेकिन बाहर से जब हम देखते हैं तो हम इसको इंस्ट्रूमेंट के रूप में नहीं देखते हैं। हम तो इसी को सब समझते हैं कि भाई देखो शांत हो गए, मतलब अब सब उनकी बोली भाषा थॉट सब खत्म हो गया, तो सब क्योंकि जड़ तत्व का बेसिस है। तो यहां पर अब सावित्री जो उद्घाटित कर रही है मृत्यु को, ये एक बड़ी अद्भुत चीज है जो श्री अरविंद हम सबके सामने ला रहे हैं, वो है इवोल्यूशनरी एस्पेक्ट। अब ये इवोल्यूशन सोल का है, वेदांत में है कि वो, तंत्र में भी है कि वो कीट पतंगे से होती हुई जाती है मनुष्य तक, मनुष्य में आकर के वो भगवान से जुड़ सकती है। तो देखा जाए तो सोल का इवोल्यूशन चल रहा है, लेकिन मैनिफेस्टेशन का कंसेप्ट नहीं है। इसीलिए सांख्य योग में हम देखते हैं कि पुरुष या प्रकृति है, प्रकृति ने एक ईगो का सेल्फ बनाया हुआ है और वो जरूरी है जब तक पुरुष अपने को रियलाइज नहीं करता। तो पुरुष नेचर की रिफ्लेक्शन जो हो रही है उसके अंदर, उन्हीं के साथ आइडेंटिफाइड है। जैसे कोई टेलीविजन देख रहा है तो वो उसके साथ, तरंगों के साथ आइडेंटिफाइड है। वो हंस रहा है, रो रहा है, जिस दिन वो कहता है कि मुझे तो डरने की कोई जरूरत नहीं, हंसने रोने की जरूरत नहीं, ये रियल नहीं हो रहा है, तो वो विटनेस बन जाता है। अच्छा मैं ऐसे देखूंगा इसको इम्पर्सनली, फिर उसको इंटरेस्ट खत्म हो जाता है, उसे विड्रॉ कर लेता है। ये अब तक मानसिकता रही है एक लाइन ऑफ स्पिरिचुअल थॉट में। लेकिन भारतवर्ष में एक दूसरी धारा रही है, वो है लोक संग्रहार, द मार्च ऑफ मैनकाइंड, जिसमें श्री कृष्ण और पुराने आर्यवर्त में हम देखते हैं कि नहीं, संसार से उदासीन होकर चले जाना किसी ऐसी अवस्था की खोज में जिसका संसार से, जड़ तत्व से कोई लेना देना नहीं, ये प्रयोजन ही नहीं हो सकता। ये लॉजिकल भी है, अगर यही प्रयोजन होता तो मनुष्य ये सारी सृष्टि क्यों होती। तो सृष्टि सृष्टिकर्ता के, सृजनकर्ता के मैनिफेस्टेशन के लिए। इसीलिए गीता में बड़ी सुंदर बात कई छोटे छोटे सूत्र में बोल गए हैं श्री कृष्ण। एक जो कहते हैं कर्म का ओरिजिन मैं ही हूं, अब आप किसको दोषी ठहराएंगे, ही इज द वन हु हैज लेट फोर्थ दिस साइकिल, ग्रेट साइकिल। लेकिन वो धीरे 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 जब वो आप बाहर के लेयर्स में आते हैं तो वो डिस्टॉर्ट होने लगती है, लेकिन फिर उसकी रिकवरी प्रोसेस स्टार्ट होती है। और वो रिकवरी प्रोसेस यहां पर सावित्री बता रही है, उनका जो काम है प्रेम के द्वारा मृत्यु पर विजय, और वो विजय कैसे आएगी वो बता रही है। मतलब हम सीधा ये सोचते हैं कि मृत्यु पर विजय, मतलब हमने तो देखा नहीं, सब मर जाते हैं, बस ये हमारी जो फिजिकल माइंड की सोच है, हमने तो देखा नहीं। लेकिन इसमें भी बहुत डिफरेंसेस हैं। एक व्यक्ति अपनी वही मृत्यु जो सबकी होती है, बाहर से देखें देह की मृत्यु, एक व्यक्ति डरता डरता जाता है, एक व्यक्ति मरने के पहले हजारों बार मरता है, एक व्यक्ति शांत रहकर मृत्यु की आंखों में आंखें डालकर कहता है तू क्या डरा पाएगी मुझे, दूसरा कहता है तो मेरी संगिनी है, मैं बोलूंगा तब आना, हस्तक्षेप नहीं करना, और एक व्यक्ति है जो तब तक अपने जीवन को कंटिन्यू करता है जब तक उसके जीवन का प्रयोजन नहीं सिद्ध हो जाता। तो इवन वेन देर इज डेथ, बट देर इज सो मेनी लेवल्स, कितने तरीके हैं जिनके द्वारा मनुष्य मृत्यु पर अंश अंश रूप में विजय प्राप्त करता है। और पहली विजय वो होती है जब हम मृत्यु से डरते नहीं हैं, मृत्यु को देखकर हम भयभीत नहीं होते हैं, और यहां पर उसका वर्णन है, लेकिन पहले सावित्री बता रही हैं, दिस वॉज द एम, पेज 632, अब ये मैजिकल लाइन्स है, दिस वॉज द एम, दिस द सुपरनल लॉ, नेचर्स अलॉटेड टास्क व्हेन ब्यूटी ड्रेंज्ड इन डिम मिस्ट वाटर्स ऑफ इनकॉन्शियंट स्लीप। सुनी ना अगली डकलिंग वाली कहानी, ब्यूटी नेचर का जो सौंदर्य है वो कहां मट्टी में कादों में कीचड़ में चला गया, और जब निकला तो सब कुछ उसके ऊपर लेप लगा था, चंदन लेप नहीं पूरा कीचड़ का लेप, तो ब्यूटी ड्रेंस डू गेट शेरविंदी इस तरह से कह सकते हैं। आउट ऑफ द वॉइड दिस ग्रैंड क्रिएशन रोज। अब यहां पर एक व्यंग का पुट भी है, अरे संसार तो बस एक नथिंगनेस से निकला, बड़ी अच्छी बात है, मतलब सुन के ही लगता है कि आपका दिमाग तो सही जगह है। आउट ऑफ द वॉइड दिस क्रिएशन रोज, मतलब कोई मैजिक हैड था जिसमें से कोई मैजिशियन कोई चीजें मर्न मर्जी निकाले जा रहा था, तो वो कहते नहीं, देयर इज अ लॉजिक बिहाइंड इट, जो आप वही निकल सकता है जो उसके अंदर इन्वॉल्व है। ये शेरविंद की पहली चीज है कि अब बीज जो डला है वही वृक्ष बनेगा, बबूल के वो हम लोग कहते हैं ना कि बोया बीज बबूल का तो आम कहां से होए, तो अब जब सृष्टि के अंदर डिवाइन का बीज है तो अंत में डिवाइन ही निकलेगा, क्योंकि बीज वही है। अब उसके स्टेप्स और स्टेजेस होंगे, अब वो यहां पर ये प्रकट कर रहे हैं, फॉर दिस द स्पिरिट केम इन टू द एबिस। कौन है इस अंधकार में छिपा हुआ स्पिरिट, तो हम कहेंगे हम देख नहीं सकते, हाँ हम तो यहां बैठे बैठे बगल वाले कमरे में क्या हो रहा है नहीं देख सकते, तो कभी कभी इतने क्रूडली बताना पड़ता है कि हम तो अपनी सोल को नहीं देख पाते, तो अब भगवान है कि नहीं, पहले हम पहला पॉइंट तो टच करें। एंड चार्ज विद इट्स पावर मैटर्स अननोइंग फोर्स इन नाइट्स बेयर सेशन टू कैथेड्रल लाइट इन डेथ्स रेल्म रिपैट्रिएट इमोर्टैलिटी। क्या बात है, सोल इमोर्टल है, मर नहीं सकती, वो कहां चली आई है, मृत्यु की गुफा में, अब वो तो मरेगी नहीं, पर क्या करेगी, धीरे धीरे यहां अमृतत्व के बीज और दिव्यत्व के बीजों को मैनिफेस्ट करेगी, यानी कि वो पहले लाइट के पॉइंट चले आए, अंधकार में चमकने लगे जुगनू की तरह, और धीरे धीरे ये जुगनू बढ़ करके कैंडल फ्लेयर्स, उसके बाद अग्नि शिखाएं, और बाद में साक्षात सूर्य का दर्शन होगा। अब लोग हैं वो कहें कि भाई ये सब तो ठीक है, आप बताइए कुछ कंक्रीट एग्जाम्पल देकर, ट्रांसफॉर्मेशन आपने लिखा हमको तो समझ नहीं आता, कोई उदाहरण दीजिए। तो श्री अरविंद उदाहरण दे रहे हैं, देखिए सावित्री इज द सिंपलेस्ट वर्क, वेरी डायरेक्ट उदाहरण दे रहे हैं, ए मिस्टिक स्लो ट्रांसफिगरेशन वर्क्स, मिस्टिक रहस्यमय, धीरे धीरे, अगर हम जीवन को बस एक छोटे से कालखंड में देखें तो नहीं समझ आएगा, लेकिन अगर विस्तार से देखें तब यह समझ आता है, मिस्टिक स्लो ट्रांसफिगरेशन वर्क्स, ऑल अवर अर्थ स्टार्ट्स फ्रॉम मड एंड एंड्स इन स्काई एंड लव। अब वो लव का एग्जाम्पल दे रहे हैं, क्योंकि प्रेम ही वो आद्य शक्ति है जो अंधकार में गया है उसको रेस्क्यू करने के लिए, इसलिए वो लव का एग्जाम्पल कि देखो लव ने क्या किया, इसीलिए यूज करते हैं वर्ड कई बार अननोइंगली, लेबर ऑफ लव, सच बात है कि लव ही लेबर कर सकता है इस तरह, कोई और शक्ति, ज्ञान थोड़ी देर के बाद चल खुश रहो घर आपने अब रहना भाई विदेश, मतलब ज्ञान तो ठीक है बहुत हो गया चलो प्रकाश प्रकाश के घर चलो, नॉलेज इज लाइक दैट, बट लव इज समथिंग विच नेवर गिव्स अप। आज ही किसका ये प्रश्न था कि अगर लोग भिन्न भिन्न हैं और उनके स्वधर्म अलग हैं तो क्या वो प्रेम रह सकता है, ब्यूटी ऑफ लव इज लव ही के साथ रह सकता है, और कोई शक्ति नहीं है जो एकदम भिन्नताओं को जोड़ दे, और यही एग्जाम्पल हम लोगों के जीवन में, मतलब हम लोग अपने मिथोलॉजीज में देखते हैं, जहाँ जालंधर और वृंदा, या मंदोदरी और रावण, कोई उनके टेम्परामेंट एक नहीं है देखा जाए तो बिल्कुल अपोजिट है, बट द पावर ऑफ लव, दैट्स वाई दे आर रिगार्डेड एज डिवाइन। मतलब वृंदा अपने प्रेम की शक्ति के कारण शी गेट्स द प्लेस बाय द साइड ऑफ लॉर्ड विष्णु, बिकॉज वो प्रेम, अब एक असुर है, मतलब वन कैन इमेजिन कि कैसा असुर, तो असुर है ना, घर में भी उसका यही चाल चरित्र, रावण कहीं जा रहा है कुछ भी जिसकी मर्जी, लेकिन मंदोदरी का प्रेम, इसलिए मंदोदरी कम्स अंडर दी फाइव प्रातः स्मरणीय है, तो प्रेम है जो इसको ब्रिज कर सकता है, लेकिन कैसे करता है, ऑल अवर लव अर्थ स्टार्ट्स फ्रॉम मड एंड एंड्स इन स्काई, आई एम रेजिस्टिंग द टेम्पटेशन. अभी रामायण का एक नया वो सामने आ रहा है कि हाउ मंदोदरीज लव हेल्प्ड इन रावणास ट्रांसफॉर्मेशन. बट एनी वेज नहीं. एंड लव दैट वॉज वंस एन एनिमल्स डिजायर. वही प्रेम है. पशु के अंदर कैसे होता है? एनिमल्स डिजायर. तो हम बोलेंगे ये प्रेम नहीं है. नहीं, ये भी प्रेम है, लेकिन ये उसने ये रूप धरा हुआ है. अब इस लेवल पर उठ के हम कह सकते हैं कि ये रूप बड़ा, ये कोई रूप है प्रेम का. लेकिन वहां पर दो बींग्स को, दो फोर्सेस को, दो सत्ताओं को, मैटर बेस्ड, उनको ड्रॉ करने के लिए यही एक संभावना थी. एंड लव दैट वॉज वंस एन एनिमल्स डिजायर देन ए स्वीट मैडनेस इन द रैप्चरस हार्ट. वही फिर जब और क्लाइंब होता है तो फिर शुरू हो जाता है स्वीट मैडनेस, है ना. ऑल द मैसेजिंग एंड ऑल दैट स्टार्ट्स स्वीट मैडनेस. एन आर्डेंट कॉमरेडशिप इन द हैप्पी माइंड. लेकिन माइंड को वो भी नहीं पसंद. माइंड चाहता है माइंड के लेवल पर शेयरिंग. तो हैप्पी कॉमरेडशिप इन द माइंड जहां देर इज अ शेयरिंग ऑफ ए डीपर काइंड. लेकिन क्या प्रेम वहां रुकता है? नहीं. देखिए, प्रेम की ऊर्जा रिलीज हो रही है मनुष्य के अंदर और इस तरह से वो प्रकट हो रही है. उसके आगे क्या होती है? बिकम्स ए वाइड स्पिरिचुअल यर्निंग स्पेस. अब ये वाइड स्पेस है, वो केवल एक मुड़ के वैराग्य में नहीं जा रही है. वो सारी सृष्टि को अपने साथ इंक्लूड करके सबके अंदर एक एक उन्नयन के लिए, एक हायर कॉन्शियसनेस के लिए उसके अंदर एस्पिरेशन जागती है. ए लोनली सोल पैशंस फॉर द अलोन. अब तब वो व्यक्ति सबसे मिला हुआ भी है, लेकिन इट बिकम्स दैट इज द पाथ भक्ति. कई बार लोग कहते हैं भक्ति एंड में आती है, पहले लव की एनर्जी रिलीज होती है. तभी तो शेरविन ने वो लिखा ना कि हुम आर दे इन लव विद देन, कि दे से दे लव गॉड बट दे डू नॉट लव मैन, समथिंग लाइक दैट. नो, हुम आर दे इन लव विद देन. यू हैव टू रिलीज दिस एनर्जी. ये नेचर की प्रोसेस है, इसको अच्छे बुरे से नहीं देख सकते. लेकिन ये जो प्रेम की ऊर्जा है, ये ऐसे रिलीज होती है. फिर ये वो ऊर्जा जब रिलीज होती है तब वो, अब एनर्जी आ गई ना, तो एक ना एक दिन वो रूट खोजेगी अपना हायर. कैसे रूट खोजेगी? यू विल डिस्कवर देर इज ए बिटरनेस ऑलवेज इन ह्यूमन लव. तो कहेगी अब मैं कहाँ ढूंढू, अब तो वो ऊर्जा आ गई. जिसमें प्रेम की ऊर्जा जागी नहीं है वो तो फिर वैसे ही इंडिफरेंट लाइफ लीड कर रहा है, उसको तो पता ही नहीं है, वो तो लाइफ इज जस्ट मूविंग ऑन. बट जिसमें ऊर्जा जाग गई वो फिर भगवान की ओर मुड़ती है. द हार्ट दैट लव्ड मैन थ्रिल्स टू द लव ऑफ गॉड. तो सारी स्टेजेस बता रहे हैं कि जो जॉय फिर उसको भगवान की प्रेम में मिलता है. बट द स्टोरी डजंट एंड देयर. ए बॉडी इज हिज चेंबर एंड हिज श्राइन. वहीं पर वो अपने पिया से मिलता है. घूंघट के पट खोलरी तो ये पिया मिलेंगे. इनर भी अंदर ही अंदर उसका मिलन हो रहा है. देन इज अवर बीइंग रेस्क्यूड फ्रॉम सेपरेटनेस. फिर क्या होता है नेक्स्ट स्टेप? ऑल इज इट सेल्फ, ऑल इज न्यू फेल्ट इन गॉड. तब आप जब संसार में आते हो उसके बाद, ये अंत नहीं है, ट्रेडिशनल भक्ति योग में ये एंड है. तब जब आप संसार में आते हो तो भगवान आपको एक नया विजन देके कहते, देख ये जो सारे वासुदेवम सर्वमिति, जो श्री कृष्ण, जो श्री अरविंद का एक्सपीरियंस है ना, जहाँ वो देखते हैं कि इवन इन दोज बॉडी, मिसयूज्ड बॉडीज एंड डार्केंड माइंड्स, क्रिमिनल्स, जो लोग मर्डरर्स, उनके अंदर भी वो देखते हैं अरे भगवान यहां भी है. तो देन इज अवर बींग रेस्क्यूड फ्रॉम सेपरेटनेस बिकॉज यू डिस्कवर द डीपर लार्जर ग्राउंड. A lover leaning from his cloister's door gathers the whole world into his single breast. तब फिर उसके बाद वो एक ही दिल सबके सीने में धड़कने लगता है. Then shall the business fail of night and death. जैसे जैसे ये प्रेम की ऊर्जा contaminate करेगी संसार को, वैसे वैसे संसार में, क्योंकि death क्या है? सेपरेटनेस है, डिवीजन है, फाइनाइटनेस है. इसी सेपरेटनेस के कारण हमारे मन, मन क्या करता है? ये शरीर है, ये आत्मा है. लेकिन यूनिटी का विजन क्या होता है? द बॉडी इज द क्राइसिस ऑफ द सोल और द इंस्ट्रूमेंट ऑफ द सोल. हमेशा वो यूनिटी की तरफ जाता है. लेकिन शुरू में ये शरीर है, ये प्राण है, ये मन है. तभी माँ लास्ट में कहती है ऑल इज डिवाइन, एवरीथिंग इज डिवाइन, शी सेज व्हेन यू हैव दिस विजन. पर वो काफी बाद में आता है, उसके पहले इट इज वन कैन नॉट डेवलप इट. बट एक टाइम आता है जब आप एक एक प्रकृति की निम्न से निम्न गति जिससे आप निकल गए, इवन जो एनिमल डिजायर है, वांट है, आप देखते हो कि इसके कवरिंग अगर हटा दो तो यहां पर भी एक दिव्यता प्रकट हो रही है इन एवरीथिंग. शुरबिंदो बताते हैं कि आवर स्मॉलेस्ट पार्ट्स हैव रूम फॉर डीपेस्ट नीड्स. इवन द स्मॉलेस्ट पार्ट्स दे कैन grow into divinity. When unity is won, when strife is lost. Thankfully, उसके बाद लोगों किसी के साथ झगड़ा क्वारल ये सब नहीं होती है, क्योंकि यूनिटी सब में देख रहे हैं, भगवान अपने आप को प्रकट कर रहे हैं, किसी में छुपा है वो क्या है, वो बड़ी सुंदर सी लाइन याद आ रही है, यार को हमने जा बजा देखा, तो कह रहा है पोइट की आई हैव सीन माई बिलवेड इन लवर एवरीवेयर, लेकिन फिर वो कहते कहाँ देख कैसे देखा, कहते कहीं जाहिर कहीं छुपा देखा. सम प्लेसेस ही इज सीन ईजली, यही डिफरेंस होता है. मदर सेज नो व्हेन शी वाज आस्क्ड दैट यू नो आर यू डिवाइन, शी सेड इट ऑल ऑफ अस आर डिवाइन, बट इट इज अ पोटेंशियल ट्रूथ टिल यू रियलाइज इट, तब तक ये तुम नहीं कह सकते हो इंटेलेक्चुअली, पर ये सच है, वस्तुतः सच यही है, लेकिन यू हैव टू रियलाइज इट, दैट्स द ट्रूथ. तो एंड ऑल इज नोन एंड ऑल इज क्लैश्ड बाय लव, हु वुड टर्न बैक टू इग्नोरेंस एंड पेन, ऐसे व्यक्ति का क्या व्यवहार रहेगा. माता जी के घटना से वी कैन टेक एन एग्जाम्पल ऑफ हाउ सच ए पर्सन वुड एक्ट. तो बात है होता दी की, तो बहुत मतलब आगे नहीं बोलूंगा, उनको आता था जाओ जाओ गुस्सा तो भगवान क्या कौन क्या. एक दिन उन्होंने माँ ने उनको रोजेस दिए, तो रोजेस उन्होंने उठा के वहाँ फेंक दिए, कहा आप कहती हो कि प्यार प्यार कुछ नहीं है, कोई आप ना आप प्यार करते हो ना मैं प्यार करती हूँ, मैं जा रही हूँ. चली गई गोलकुंड जाके, वो पैक करने लगी सामान जाने के लिए, पीछे भागते भागते वसुधा बहन गई. वो वसुधा ने कहा कि माँ ने तुम्हारे लिए कुछ भेजा है, जानना चाहोगी? हाँ, अब मुझे कुछ जानना नहीं है, खैर बता दो क्या कहा है. तो एक तो उन्होंने कार्ड दिया, माँ ने उनको जितनी चिट्ठियाँ लिखी है ना, आप कल्पना नहीं कर सकते, किसी को एक्चुअली नहीं लिखी है, द मैक्सिमम लेटर्स आर टू हर, क्योंकि जितने डिफिकल्ट केसेस उनको भगवान ज़्यादा करीब. तो नहीं, इट इज़ ए फैक्ट. सो कई बार आदमी ये सोचे ना, हम भगवान ने हमको बहुत स्पेशल, मे बी बिकॉज वी आर डिफिकल्ट केसेस, बट एनी वे. सो वो पहले तो कार्ड दिया, कार्ड में कुछ ऐसा लिखा था, आई एम फॉरगेटिंग एग्जैक्टली, बट समथिंग लाइक कि डू यू रियली वॉन्ट टू लीव, जस्ट एक वाक्य जिसमें इतना करुणा और ये सब था, लेकिन बोलती कि डू यू वॉन्ट टू नो कि माँ ने क्या बोला तुम्हारे जाने के बाद, क्या बोला माँ ने, सोचिए फेंक के आई है, माँ जगत धात्री नमो नमो, मतलब शी कुड क्रश द होल क्रिएशन विद ए सिंगल गेज. माँ ने ये नहीं कहा वो जानती नहीं मेरी वैल्यू, उसको पता नहीं है मैं कौन हूं, इतना उस पर प्यार दिया है, देखो कैसे बिहेव कर रही है. माँ ने उसको मैसेज दिया, वसुधा को बोला वो जानती नहीं है कि वो मुझे कितना प्यार करती है. माँ ये नहीं कह रही कि मैं प्यार करती हूँ, तो एविडेंट है वो नहीं जानती कि वो मुझे कितना प्यार करती है. तो देन इज अवर बीइंग रेस्क्यूड फ्रॉम सेपरेटनेस, तभी तो वो काम कर पाए जिस तरह का काम माँ श्री अरविंद करने आए थे. नहीं तो कृष्ण जी ने तो फिर भी थे दोनों तरफ, लेकिन कौरवों का तुम उधर रहो, पांडव इधर, श्री कृष्ण अपग्रेडेड वर्जन श्री अरविंदो, उन्होंने कहा सब आ जाओ आप. तो दारा जी को भी आ गया, औरंगजेब भी आ गया, फैक्ट है ये वैसे, औरंगजेब भी आ गया आश्रम में, दारा जी को भी आ गया, तो वही कोई बात हो, इतना अर्जुन भी आया, पक्का दुर्योधन भी आया होगा, कौन बचा, नहीं कोई मालूम नहीं, मैं कह रहा हूं कोई कह रहा था अर्जुन, मैंने कहा अर्जुन ही नहीं दुर्योधन भी आया होगा, क्योंकि इस बार तो करुणा में रूप. इसीलिए माँ कहती है ना कि टू थिंग्स यू मस्ट नेवर फॉरगेट, कौन सी दो चीजें बता रही हैं, वो ये नहीं कह रही हैं श्री अरविंदो नॉलेज, नहीं कहती है श्री अरविंद की करुणा और माँ का प्रेम, टू थिंग्स यू मस्ट नेवर फॉरगेट. तो फिर किसी लोग भी देखिए मॉडर्न डिसाइपल्स, उन्होंने एक एग्जाम्पल ढूंढ लिया जहां ये शायद सच ना हो. उन्होंने एक फ्लावर है जिसका नाम है श्री अरविंदो कंपैशन, पूछते हैं माँ से देखिए लुक एट द चीक. मुझे तो बड़ा चीकी वो क्वेश्चन लगा, मदर बट द फ्लावर श्री अरविंदो's कंपैशन डज नॉट लास्ट लॉन्ग, इट ड्राइज अप वेरी क्विकली. अब सोचिए माँ के सीने में कैसा खंजर गया होगा अंदर में. माँ कहती हैं यस बट नॉट द कंपैशन, कंपैशन लास्ट फॉर एवर. एक और ऐसी कहानियां हैं सिंस वी आर एट इट, कि कैसे उन्होंने लोगों को सहेजा है, सहाना दी, वो देखती है अचानक कि माँ सूप सेरेमनी के समय थोड़ा सा सीरियस सी है, तो उनको लगता है क्या बात है, तो नलनीदा से पूछने जाती है कि माँ क्या क्या बात है, क्या बात है नलनीदा, माँ थोड़ी सी सीरियस लग रही है। कहती है हाँ तुम्हें याद है तुमने क्या किया था कुछ दिन पहले? नहीं माँ क्या किया था? तुमने श्री अरविंद का चित्र फ्रेम में डालना चाह रही थी? हाँ माँ। हाँ नलनीदा, तो उनके जो पाँव थे आ नहीं रहे थे फ्रेम में? हाँ। तुमने उनको काट करके किनारे फेंक दिया था। यू कैन इमेजिन ये, और इन सबको लेके व्हेन यू सी श्री अरविंद एंड मदर्स लेटर्स टू हर, कैसे सबको लेकर, अब आज हमको लगेगा कि ये कैसे कोई कर सकता है, पर और वो साधारण सा, शी इज ए वंडरफुल, मतलब नो डाउट कि द वे शी टुक स्टैंड, लेकिन ये छोटी छोटी चीजें कि श्री अरविंद के चित्र में पांव उनके काट करके कि फ्रेम में फिट नहीं हो रहे, ट्राइंग टू फिट द डिवाइन इनटू अवर फ्रेम, तो इस प्रकार का प्रेम, तो तभी वो कहती है कि दिस लव विल कॉन्कर इग्नोरेंस एंड पेन। ओ डेथ आई हैव ट्रायम्फ्ड ओवर दी विद इन, अंदर मैंने विजय प्राप्त कर ली है तेरे ऊपर, कैसे? आई क्विवर नो मोर विद द असॉल्ट ऑफ ग्रीफ, ए माइटी कामनेस सीटेड डीप विद इन has occupied my body and my sense. It takes the world's grief and transmutes to strength. It makes the world's joy one with the joy of God. तो इसमें उसका वर्णन है जो व्यक्ति realized है, वो संसार के दुख को शिव की तरह पी लेता है और उसको अंदर में सोखता है। वो ये नहीं कहता अच्छा तुमने मेरे साथ ये किया मेरा टर्न आने दो, उसको पी लेता है और उसको यही चरणामृत बन जाता है वो, और संसार के जॉयज में भी वो मिलता है। ये नहीं कि नहीं नहीं आई विल नॉट टच दिस इज स्पिरिचुअल लाइफ इज डिफरेंट, लेकिन उस सबको अपलिफ्ट कर देता है टुवर्ड्स द जॉय ऑफ गॉड। माई लव इटर्नल सिट्स थ्रोन्ड इन गॉड्स काम, फॉर लव मस्ट सोर बियॉन्ड द वेरी हेवेंस एंड फाइंड इट्स सीक्रेट सेंस इनएफेबल, इट मस्ट चेंज इट्स ह्यूमन वेज टू वेज डिवाइन। प्रेम को नष्ट नहीं करना है, उसको डिवाइन में डिवाइन रूप देना है। परसों तरसों ही बात हो रही थी कि पहले भी मैंने कहा है, जब किसी साधिका ने माँ से पूछा माँ मुझे इससे प्रेम हो गया है मैं क्या करूँ, माँ कहती नेवर स्टाइफिल लव एनोबल एंड रिफाइन इट, क्योंकि प्रेम के अंदर दिव्यता की संभावना है। शेरविन भी कहते हैं इमोशनल इमोशंस कैन बी अपलिफ्टेड, वाइटल इंटरचेंज यस यू हैव टू रिमूव इट, बट लव इज समथिंग जो इमोशंस का जो एस्पेक्ट है वो अपलिफ्ट हो सकता है। सो इवन वाइटल लास्ट में वो भी रूपांतरित होता है, बट अदरवाइज दिस इज Yet keeps its sovereignty of earthly bliss. लेकिन इसका मतलब अच्छा लव, डिवाइन लव मतलब अब हम बैठे रहेंगे एक तख्त ताज पर और केवल भक्ति रस में एक कहानी भजन करेंगे? नहीं नहीं नहीं, अर्थली ब्लिस, अर्थली ब्लिस क्या होता है आप देखिए, माँ रियलाइज थी जब वो आ रही हैं यहाँ पे, अर्थली ब्लिस छोटी छोटी चीजें, लोग बैठ के चाय भी पीते हैं भोजन भी करते हैं घूमने भी जाते हैं। मदर हर्सेल्फ व्हेन यू सी व्हेन शी केम शी वुड गो ऑन ड्राइव, कैन यू इमेजिन शी वुड गो ऑन, ट्रेडिशनल योगीज विल बी स्कैंडलाइज्ड, ड्राइव पे जाती थी फिर साथ बैठ के लोग बैठ करके शेयर करते थे 1929 की जो उसी के कारण तो है, दे वुड गो ऑन ए ड्राइव देन देयर इज अ प्लेस वेयर दे वुड सिट टुगेदर। कई जगहों पर विल्यानोर की तरफ जाती थी माँ, वहाँ बैठ करके अलग अलग जगह पर, वो कालीवीरम पट्टनम की स्टोरी है, सारे जगह माँ जाती थी। अब वो एक अलग भाव से जाती थी, वो केवल एक पिकनिक मनाने नहीं जाती थी, लेकिन ये कि वो सब चीज़ें आप एक इनोबल कर सकते हो, कोई चीज़ को शन नहीं करना है, अपलिफ्ट करना है और चेंज करना है। अब उसका लक्षण क्या है, ओ डेथ Not for my heart's sweet poignancy, nor for any happy body's bliss alone, I have claimed from thee the living Satyavan, but for his work and mine, our secret charge. तुम ऐसा सोच रहे हो कि मेरी कोई शरीर की या प्राण की या भावना की भूख है, ऐसा नहीं है, our secret charge. ये काम है जिसके लिए मैं आई हूँ और ये काम सत्यवान के साथ होना है, इसलिए मैं उसको क्लेम कर रही हूँ। इसी पैसेज में लास्ट में लव मस्ट नॉट सीज टू लिव अपॉन द अर्थ, बुल्ले शाह ने इसको बेशक मंदिर मस्जिद तोड़ो, बुल्ले शाह ये कहता, पर प्यार भरा दिल कभी ना तोड़ो, इस दिल में दिलवर रहता, नेवर ब्रेक ए हार्ट विच इज फुल ऑफ लव, ऑलवेज यू हैव टू कीप इनोबलिंग इट, अब ब्रेक का मतलब ये नहीं कि यू नो गेट ड्रैग्ड इनटू द एबिस, बट उसको इनोबल करते जाना है, प्यार भरा दिल कभी ना तोड़ो। तो यहां पर कहती हैं, लव मस्ट नॉट सीज टू लिव अपॉन द अर्थ फॉर लव इज द ब्राइट लिंक ट्विक्स्ट अर्थ एंड हेवन। प्रेम ही नहीं रहेगा तो कोई और शक्ति नहीं है जो जोड़ सके इस संसार को ईश्वर के साथ। लव इज द फार ट्रांसेंडेंट एंजल हियर, फार ट्रांसेंडेंट मतलब कॉस्मिक चेतना भी नहीं, उसके बाहर से आया है। और माँ कहती है इट इन इट्स ओरिजिन इट इज बियॉन्ड बीइंग एंड नॉन बीइंग। इफ यू रीड इट आई मीन बियॉन्ड मैनिफेस्ट अनमैनिफेस्ट बियॉन्ड बीइंग एंड नॉन बीइंग, दैट इज द ओरिजिन ऑफ लव। यू कांट इवन इमेजिन कि भगवान का जो उच्चतम वो प्रेम के रूप में। लव इज मैन्स लीन ऑन द एब्सोल्यूट, प्रेम के ही कारण वो भगवान की ओर जा सकता है। अब फिर मृत्यु अपनी अपनी, वो कहते हैं ये सब ठीक है, लाफ्टर आयरोनिक लाफ्टर, कहते हैं हाँ यस ऐसी, इवन सो मैन चीट द ट्रूथ विथ स्प्लेंडिड थॉट्स। मृत्यु कह रहा है ये सब हाँ सुनने में बहुत अच्छा लगता है सावित्री, ऐसी मनुष्य लोगों को मूर्ख बनाते हैं, ये सब बातें मत करो, यहाँ पर केवल काम करो बातें मत करो, भगवान की बात हायर बात ये सब मत करो, ये सब करना नहीं है, क्योंकि ये सब तो लोग कहते हैं करते नहीं हैं सब समझ गए क्या बात इवन सो मैन चीट द ट्रूथ विद स्प्लेंडेड थॉट्स, दस विल दाउ हायर द ग्लोरियस चार्लटन माइंड। धोखाधड़ी है ये सब, मनुष्य धोखा दे रहा है। टू वी फ्रॉम द आइडियल्स गोजामेर एयर ए फाइन रेमेंट फॉर दाई बॉडीज न्यू डिजायर्स एंड दाई हार्ट्स क्लचिंग ग्रीडी पैशन क्लोथ। ये सब आइडियल देखा किसी ने? फैक्ट तो ये है देखो सारे दुनिया में फैक्ट है, बाकी जो मिस्टिक कहते हैं वो फैक्ट थोड़ी होता है, वो तो एक आइडियल होता है, वो कहीं मन में उनके फितूर कल्पना करते हैं। रियल लाइफ इज दिस, फैक्ट ये है, लोग बीमार होते हैं मरते हैं और ये होता है वो, यही है ना, लोग तो इसी को फैक्ट मानते हैं। तो तुम मनुष्य हो, मनुष्य की तरह जीवन जियो। तो बट सावित्री रिप्लाइड टू द डायर गॉड, उसके पहले भी सब बोलता है मनुष्य को टू लेगेड वॉर्म ये सब चीजें, मनुष्य क्या है, बट सावित्री में उसको क्या पढ़ना उसके प्रलाप को, वो तो हम रोज सुनते रहते हैं, दुनिया भर के लोग यही करते रहते हैं। बट सावित्री रिप्लाइड टू द डायर गॉड, यस आई एम ह्यूमन येट शेल मैन बाई मी सिंस इन ह्यूमैनिटी वेट्स इज आवर द गॉड। मनुष्य मनुष्य के अंदर भगवान प्रतीक्षारत है, किस दिन वो कहेगा कि यस आई वॉन्ट टू बी लाइक यू वन विथ यू, वेट्स द गॉड ट्रैम्पल द डाउन टू रीच द इमॉर्टल हाइट्स ट्रांसेंडिंग ग्रीफ एंड पेन एंड फेट एंड डेथ। मनुष्य के अंदर ये संभावना है, वो कहा ना किसने खुद ही को कर बुलंद इतना कि हर तकदीर के पहले खुदा बंदे से खुद पूछे बता तेरी रजा क्या है। तब इट्स ए वे ऑफ सेइंग, इट मे साउंड egoistic, बट इट means द सोल कैन कम टू अ पॉइंट वेयर इट डिसाइड्स इट्स फेट, इट इज नॉट बाउंड टू द ब्लाइंड डिटर्मिनिज्म ऑफ नेचर। ए गॉड हेड स्टैंड बिहाइंड द ब्रूट मशीन, उसके पहले मशीन में वो फंसा हुआ है, जिस दिन वो अपने को अलग कर लेता है जान जाता है कि नहीं ये तो मशीन है, इसको मेरे अनुसार चलेगी। सो दैट इज हाउ वन कैन डू, यस माई ह्यूमैनिटी इज ए मास्क ऑफ गॉड, कि हाँ मनुष्य तुम देख रही हो ना या देख रहे हो, लेकिन इट इज ए मास्क ऑफ गॉड। ही ड्वेल्स इन मी द मूवर ऑफ माई एक्ट्स, आई एम द लिविंग बॉडी ऑफ हिज लाइट, इन मी आर द नेमलेस एंड द सीक्रेट नेम। फिर वो अब उसका काम ही यही है थोड़ा बहुत, वो कहता है यू आर इमेजिनिंग, ओ प्रिस्टेस इन इमेजिनेशन हाउस। कितनी अजीब बात है, मतलब ये तो मैंने सच में अभी ये एपिसोड है कि कोरोना इज ट्रू, किसी से पूछो देखा आपने, देखा आपने, किसी ने देखा कहीं लेबोरेटरी में किसी ने देखा, भगवान है नहीं 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 देखा है भगवान को मतलब हम उन चीजों को इलेक्ट्रॉन, आई टेल यू इलेक्ट्रॉन एक्चुअली यू कांट रियली सी इन दैट सेंस, यू कैन बट इट्स वेरी डिफिकल्ट, बट वी जस्ट एक्सेप्ट दीज थिंग्स एज ट्रू। लेकिन ईश्वर ईश्वरीय शक्ता सत्ता उनकी शक्ति रूपांतरणकारी ये सब चीजों को हम मान नहीं सकते। तो यहां पर वो कहते हैं वो प्रीस्ट सब इन इमेजिनेशन हाउस परसुएड फर्स्ट नेचर्स फिक्स्ड इम्यूटेबल लॉज एंड मेक द इम्पॉसिबल दाई डेली वर्क, हाउ कैन्स दाउ फोर्स टू वेट टू इटर्नल फोर्स। पहले तुम कुछ दिखाओ, तुम्हारी क्या शक्ति है, परसुएड मैटर को कुछ तो दिखाओ कि तुम्हारी कम से कम बीमारी के ऊपर स्पिरिट का आधिपत्य दिखाओ, प्रोलॉन्ग द बॉडीज लाइफ, शो दैट द स्पिरिट हैज पावर ओवर मैटर, देन आई विल एग्री कि हाँ ये संभव है. ये नहीं कहता एग्री क्योंकि फिर तो फंस जाएगा, तो कहता है कि पहले ये सब दिखाओ. तो लास्ट में वो कहता है जो हम सब सुनते रहते हैं सारे चैनल्स पे, ही हु वुड टर्न टू गॉड मस्ट लीव द वर्ल्ड, ही हु वुड लिव इन द स्पिरिट मस्ट गिव अप लाइफ, ही हु हैज मेट द सेल्फ रिनाउंसेस सेल्फ, सेल्फ विद ए स्मॉल एस. तो भगवान को जो मिल गया उसको जीवन से, मनुष्य से, इस संसार से क्या लेना देना, यही तो हम लोगों ने सुना है. तुमने ध्यान से पढ़े नहीं है इंडियन स्क्रिप्चर्स के कुछ एक अंश, सारे नहीं है. भारतवर्ष में ये अनफॉर्चुनेटली एक मोक्षवादी धारा पर जो इतना स्ट्रेस हो गया, इट्स नॉट ट्रू. इफ यू लुक एट, आई मीन भीष्म, आई मीन आई एम अमेज्ड इवन विद दैट मैन्स पावर, कि नो आई विल नॉट डाई टिल आई वांट, कॉन्शियसनेस पूरी विड्रॉ कर लूंगा मैं, जहां जहां बाण लगे मुझे कोई पेन नहीं होगा. वॉट काइंड ऑफ पॉसिबिलिटी देर इज जस्ट इन मेटीरियल लाइफ. That was the path shown to the ancient Aryan world. जो अब हम लोग कहां से बस ये संसार मृत्यु का है वहां चलो. But Savitri replied to mighty death, my heart is wiser than the reason's thoughts. ये एक युद्ध होता है ना, reason क्यों नहीं सच जान सकता. लोग कहेंगे ये क्या बात हुई कि heart को पता है, रीजन इसलिए नहीं जान सकता क्योंकि रीजन का जो डेटा है सेंसेस का डेटा है. ये अन्यत्र बताते हैं श्री अरविंद, वो सेंसेस के डेटा पर रीजन उस डेटा को, रीजन का तरीका क्या है, ऑब्जर्वेशन एनालिसिस इन्फरेंस, दिस इज द बेसिक प्रेमाइस. अब उसमें भी प्रेमाइस होती है, वो चीजें वो ऑब्जर्व नहीं कर सकता जो उसके प्रेमाइस के अंतर्गत नहीं है. अब उसकी प्रेमाइस है मैटर इज द सोल रियालिटी, जनरली जो ये एनालिसिस करते हैं. अब आप मैटर को कैसे देखते हो, आप अपनी इंद्रियों के द्वारा, ये तो है ना ज्ञान इंद्रियां. अब इंद्रियां क्या दिखाती है, छुटका सा बाहर का फसाद दिखाती है. तो रीजन उसको पिकअप करता है, एनालाइज करता है, बाहर के फसाद को देखता है, अंदर का ट्रुथ तो जानते ही नहीं है, तो वो तो कभी सत्य को जान नहीं सकता. यही मृत्यु कह रही है, देखो लोग मरते हैं क्यों, वो बाहर का एक अपेरेंट. इसलिए माँ कहती है अवर साइंस इज ए साइंस ऑफ अपियरेंसेस, क्योंकि हम अपियरेंसेस को एनालाइज करते हैं, इनर ट्रूथ को हम देख नहीं पाते. तो लेकिन हार्ट के पास एक मिस्टिक लाइट है, क्यों, क्योंकि वो सोल के नजदीक है, वो डायरेक्ट देखती है, वो देख पाती है जो रीजन एनालाइज करके नहीं देख पाता. इसलिए माँ कह रही है माई हार्ट इज वाइजर दैन द रीजन थॉट्स, माई हार्ट इज स्ट्रॉन्गर दैन दाई बॉन्ड्स ओ डेथ. It sees and feels the one heart beat in all. और ऐसे डिबेट चलता रहता है और मृत्यु प्रश्न, काउंटर प्रश्न, लास्ट में डेथ बोलती है, सो प्रूव thy absolute force टू द wise gods by choosing earthly joy for self demand. And yet from self and its gross masks live free. कि ये सावित्री तुम कह क्या रही हो, तुम ठीक है तुम्हारे अंदर इतना आत्म तत्व जागा हुआ है, लेकिन ये क्या है? तुम एक फिजिकल बीइंग, उसकी अर्थली लाइफ, इससे उलझ क्यों रही हो. ये लास्ट कहते ना वो लॉजिक दे रहा है कि ये चॉइस करके यू आर प्रूविंग दैट यू आर ए डिवाइन इनकारनेट और ए डिवाइन बींग और ए हायर बींग. वट आर यू डूइंग, यू आर चूजिंग अ ह्यूमन बॉडी, बॉडीली लाइफ. तो यहां पर वो रहस्य समझाएंगी, वाई, बिकॉज ह्यूमन बॉडी इज द इंस्ट्रूमेंट थ्रू विच द डिवाइन इज टू मैनिफेस्ट. तो कह रहे यू आर चूजिंग दिस, तो यू कैन, यू थिंक यू कैन लिव इन दिस वर्ल्ड, तुम इस संसार में रह के भी इसके मास्क से फ्री हो सकती हो, आर यू रियली लाइक दैट. मदर वॉज लाइक दैट. माँ के बारे में जब माँ यहां पर आई तो सबको पता है कि श्री अरविंदो के बारे में माँ ने क्या लिखा डायरी में. श्री अरविंद से उनके भाई ने पूछा, बरिंदा ने, कि माँ ने तो लिखा कि आप भगवान हैं, श्री कृष्ण को उन्होंने देखा, आपने क्या देखा जब माँ आई शुरू में. तो श्री अरविंद कहते हैं, ओह मीरा इज बॉर्न फ्री, जन्म से ही मुक्त है, कोई बंधन नहीं उनको. तो जो जन्म से मुक्त है वो किसी भी प्रकार के बंधन में जा सकता है, यही सावित्री में बात है। आपको लग रहा है कि वो बंधन है, लेकिन वो मुक्त है, उसके पास जेल को खोलने की चाबी है, वो जब चाहे लेकर के उसको काट सकता है इफ वन वांट्स। ओनली ऐसा बीइंग जा सकता है एकदम नीचे अंधकार में भी, जो जानता है कि उसके अंदर प्रकाश कभी मरेगा नहीं, तो ही कैन डेयर दैट। तो फिर वो लास्ट में कहते हैं कि ऑल द ब्रीफ जॉयज अर्थ कीप्स फॉर मॉर्टल हार्ट्स, ओनली द वन डियरेस्ट विश दैट आउटवेज ऑल हार्ड लॉस फॉरबिड एंड थाई आयरनिक फेट। तो कहते हैं ठीक है तुमको यही सब चाहिए ना, मॉर्टल जॉयज, चलो मैं दे देता हूं तुमको। आयरोनिकली बोल रहा है यही चाहिए था तुम्हें, इतनी दूर आई हो। सत्यवान को मत मांगना, उसको मैं शरीर में नहीं लौटाऊंगा, बाकी जो मांगना है मांग लो। तो सावित्री कहती हैं, इफ द आईज ऑफ डार्कनेस कैन लुक स्ट्रेट एट ट्रूथ, लुक इन माई हार्ट एंड नोइंग व्हाट आई एम, गिव व्हाट दाउ विल्ट और व्हाट दाउ मस्ट ओ डेथ, नथिंग आई क्लेम बट सत्यवान अलोन। अब इसमें शेरविंद ने जो ओरिजिनल स्टोरी है उससे ये बदला है, मतलब बदला नहीं है उसको एकदम, सावित्री स्टेडफास्ट इनर विल, लेकिन डेथ अब वो उसको समझ नहीं आ रहा है वो क्या करे। अब ओरिजिनल स्टोरी में कि डेथ कहता है कि तुम इतने कदम चली हो मेरे साथ तो तुम्हें कुछ तो मैं देने का बनता है, एक्चुअली सावित्री कहती देखो मैं तुम्हारे साथ कितने कदम चली हूँ। तो कहता हाँ वो तो है, तो मैं तो तुम्हारी मित्र हो गई। हाँ मित्र तो हो गई, तो मित्र तो ऐसे आप वापस नहीं लौटाते हो। तो कहते हाँ बोलो क्या क्या चाहिए, सत्यवान को छोड़ के और कुछ भी ले लो। तो सावित्री, आई गिव टू दी सेव्ड फ्रॉम डेथ एंड पॉइजनेंट फेट। अब डेथ दे रहा है, वट एवर वंस द लिविंग सत्यवान डिजायर्ड इन इज हार्ट फॉर सावित्री। सत्यवान को नहीं लौटा सकता, लेकिन उसकी सारी कामनाएं जो सत्यवान के साथ समाप्त हो गई, लुक एट द आयरनी ऑफ दिस, वो सब मैं फुलफिल करवा दूंगा। लुक एट इट्स सो इंटरेस्टिंग। लेकिन उसको निगेट नहीं कर रही है शेरविंद, उसको निगेट नहीं कर रहे हैं जो सत्यवान के साथ सावित्री ने स्वप्न देखे, उसको निगेट नहीं कर रहे हैं शेरविंद। वो कहते हैं कि ये, और सावित्री स्वीकार करती हैं, कहती हैं हाँ। तो वो कह रहे हैं वो सारे स्वप्न जो तुमने देखे थे, वो सारे स्वप्न मैं तुम्हें दे रहा हूँ, वो सारी कामनाएं तुम्हारी पूरी होंगी। अब क्या क्या है उसी में ये सारी हैं चीजें कि अंत में वो कहते हैं कि तुम्हारे बहुत सारे बच्चे होंगे, ऑफ टेंडर सर्विस टू थाई लाइफ डिजायर्ड एंड लविंग एम्पायर ओवर ऑल थाई लव्ड, टू पोल्स ऑफ ब्लिस मेड वन, ओ सावित्री रिटर्न ओ चाइल्ड टू दाई फोरसेकन अर्थ। कहते हैं कि मैं तुम्हें बहुत सारे बच्चे दूंगा जिनकी जिनकी जिनको लालन पालन में तुम्हें भी आनंद आएगा, और जब वो बड़े होंगे तो आज के बच्चों की तरह नहीं जो चले मुड़ के चले जाएंगे, वो देखभाल भी करेंगे। तो कहते हैं डबल ब्लिस, टू पोल्स ऑफ ए सिंगल जॉय। लुक ओनली श्योरविंद कैन राइट लाइक दैट। कहते हैं कि केवल ये कहते हैं ना कि चलो तुम्हें संतान होगी, ये तो आधा सच हो गया, संतान होगी तो माँ बाप का तो प्रेम आएगा, वो जॉय होगा। लेकिन यहाँ डेथ कह रहा है कि वो तो मैं दूंगा, लेकिन साथ में वो भी तुमको देखभाल करेंगे। तो यहां पर देखिए, द ऑपोजिट स्वीटनेस इन thy days शेल मीट, ऑफ टेंडर सर्विस टू thy life's डिजायर्ड। कौन है डिजायर्ड? हस्बैंड बच्चे जो भी हैं वो सब डिजायर्ड, एंड लविंग एम्पायर ओवर ऑल thy loved। लेकिन केवल तुम सेवा नहीं करोगी, तुम उनकी आंख का तारा बन के रहोगी, दोनों चीज एक साथ होंगी। रिटर्न ओ चाइल्ड टू thy forsaken अर्थ, बट सावित्री रिप्लाइड thy gifts resist, अर्थ cannot flower if lonely I return। अब इसको यहीं पर वो जो ट्रेडिशन स्टोरी है समाप्त हो जाती है, जब सावित्री कहती है कि ये तुमने दे दिया वरदान, लेकिन तुम तो धर्म सावित्री की उस स्टोरी में शी कन्वर्ट्स डेथ यमा टू धर्मराजा। वो एड्रेस करने लगती हैं धीरे धीरे उनको, धर्मराज कहती हैं एक पॉइंट पर आके कि तुम तो धर्म को करते हो इस तरह से, तो तुम तो धर्म के वो तुम मुझे अधर्म करने को क्यों कह रहे हो। कहते मैं कहाँ कह रहा हूँ अधर्म करने, तुम कह रहे हो धरती पर चले जाओ बच्चे हो जाए तुम्हारे, कैसे मेरे बच्चे होंगे जब सत्यवान ही नहीं रहेगा। तो वो कहते हैं हाँ ये तो बात सही है, मैं क्या करूँ। तो डेथ कहते हो तो समझदार, धर्म का ज्ञान है तुमको, ठीक है जाओ। दैट्स हाउ द स्टोरी एंड्स। लेकिन नॉट हियर, क्योंकि सावित्री केवल अब एक सत्यवान के लिए नहीं आई है। कई बार लोग पूछते हैं कि फिर सत्यवान का क्या हुआ। अकॉर्डिंग टू ट्रेडिशनल स्टोरी सत्यवान 400 साल तक जीवित रहे। दिस इन्फॉर्मेशन मतलब उन्होंने एक पूरी आयु अपना जो कर्म था करके हो गए। वहां मैटर के कॉन्क्वेस्ट की बात नहीं है, वहां इस प्रकार की अनपेक्षित मृत्यु जहां पे कोई व्यक्ति अपने लाइफ का मिशन ही नहीं फुलफिल कर पाए। यही सावित्री जो ट्रेडिशनल स्टोरी है उसमें यम को कहती है, कहती ये क्या बात हुई, ही इज नॉट येट फुलफिल द पर्पस। लेकिन यहां पर शेरविंद इसको एक पूरे उस पर ले जाते हैं, दूसरी भूमि पर, कि उसने तो अपने जीवन को जिया ही नहीं। और सच में अगर जीवन में हम देखें तो अकाल मृत्यु से पीड़ा होती है। कोई व्यक्ति जिसने अपने जीवन का मिशन फुलफिल नहीं किया, इतना तो होना ही चाहिए, इतना तो बनता है कि अब जो आया थोड़ा करके उसके बाद ठीक है, उसके बाद लिंगर करना भी अजीब लगता है, लेकिन कम से कम उतना तो होना चाहिए। तो ट्रेडिशनल स्टोरी में यहां पे समाप्त हो जाती है। और फिर सावित्री इंसिस्ट करती है कि नहीं, मुझे सत्यवान ही चाहिए। और डेथ बार बार कहता है रिटर्न, उसको क्रोध आ रहा है। फिर सावित्री उसको कहती है कि अपना थोड़ा सा रिवील करती है अपने बारे में। वो लास्ट वाला पार्ट हम लोग पढ़ के रुकेंगे। वो डार्क आयरनिक क्रिटिक ऑफ गॉड्स वर्क। अब कुछ लोग होते हैं ना, एक तो होते क्रिटिक हैं, क्या संसार बनाया भगवान ने, ये देखो वो देखो प्रॉब्लम, मतलब दे हैव डन एमडी पीएचडी इन कंप्लेनिंग। कुछ लोगों की ये महिमा होती है कि कुछ भी क्रिटिसाइज कंप्लेन करना है ना, उनको दिख जाएगा। वो आपने आपकी साड़ी सुंदर है, लेकिन उनको दूसरे की साड़ी देख के वो कहेंगे कि तुम्हारी साड़ी मेरी साड़ी से ज़्यादा सफ़ेद कैसे। अरे अच्छा है ना, दोनों की थोड़ी भिन्नता तो होनी चाहिए। आपने सब अच्छा रखा, उनको एक डॉट दिख जाएगा और कहेंगे देखो यहाँ पे डॉट है। तो कहती डार्क आयरनिक क्रिटिक, मतलब संसार में इतना कुछ अच्छा है, उसको नहीं देख करके केवल ये पीड़ा है, ये बहुत जॉय भी है संसार में। इट्स नॉट लाइफ डिवाइन में शेरविंद बताते हैं कि इफ यू लुक एट लव लाइफ इन द वर्ल्ड एंड सी इट्स बैलेंस, 95% ऑफ इट इज जॉय। मतलब ज्यादातर तो हमारे जॉय के मोमेंट्स होते हैं ना, हाँ पीड़ा के भी होते हैं, लेकिन वो हमको स्टार्क लगते हैं, कंट्रास्ट, क्योंकि हम हमें लगता है कि नहीं होनी चाहिए पीड़ा, ये एक हमारे अंदर एक इंट्यूशन है। और दूसरा जब वो होते हैं तो पशु का क्या होता है, पीड़ा हुई, आज एक हिरण घूम रहा था, उसका शावक चला गया या हस्बैंड चला गया, अगले दिन वो फिर खाने आ जाता है उसको, मतलब वो मनुष्य उसके ऊपर लेमेंट करता है, करता रहता है, ये मनुष्य का स्वभाव है, क्योंकि वो पास्ट और फ्यूचर दोनों सबको, ही डज नॉट लिव इन द प्रेजेंट, विच इज इन अ वे गुड, बट इन द सेंस इन द इग्नोरेंट प्रेजेंट। पशु ही लिव्स इन द इग्नोरेंट प्रेजेंट, तो मैन हैज टू लिव इन द इटर्नल प्रेजेंट। लेकिन वो उसको पीड़ा होती है। अब वो घटना बहुत चली गई, बहुत कुछ हो गया जीवन में, अच्छा होने लगा, लेकिन उसको पीड़ा उसी मोमेंट की है, तो हम प्रोलॉन्ग भी करते हैं। इसीलिए अभी भी मतलब मुकेश के गाने फेवरेट, अब हो गया अब, लेकिन वो हमको सुनना वही है। तो इस प्रकार से सावित्री बताती हैं, डार्क आयरोनिक क्रिटिक ऑफ गॉड्स वर्क, दाउ मॉकेस्ट द माइंड एंड बॉडीज फॉल्टरिंग सर्च फॉर व्हाट द हार्ट होल्ड्स इन ए प्रॉफिट आर एंड द इमॉर्टल स्पिरिट शैल मेक इट्स ओन। माइंड इज ए हार्ट दैट वर्शिप्ड दो फॉरसेकन द इमेज ऑफ द गॉड इट्स लव एडोर्ड, आई हैव बर्न्ड इन फ्लेम टू ट्रैवल इन हिज स्टेप्स, आर वी नॉट दे हु बोर वास्ट सॉलिट्यूड सीटेड अपॉन द हिल्स अलोन विद गॉड। अब ये बहुत आगे, अब वो अपने आत्म तत्व का सत्य बता रही है कि मुझे सब मालूम है सत्यवान के साथ मेरा संबंध केवल इस जन्म का नहीं है, लाइफ आफ्टर लाइफ। शेरविन दुर्गा स्त्रोत में लिखते ना कि हम माँ युगों युगों पर आते हैं, जन्म लेते हैं, मानव शरीर धारण करते हैं तेरी संतान, और हम धारण करते हैं तेरा काम करके हम वापस चले जाते हैं। अब शेरविंद के लिए तो ये रियल ट्रूथ है, और हम लोगों के लिए तो यही बस एक जन्म को ही हम समझते हैं। अंत में वो कहती हैं बहुत सुंदर लाइन से, लाइफ ओनली वाज माई ब्लाइंड अटेम्प्ट टू लव। कई बार प्रयास करके मनुष्य सक्सीड होता है। आपने देखा होगा दो प्रकार के लोग हैं, एक एग्जाम इसलिए नहीं देते हैं कि हम फेल हो सकते हैं, तो उनको अब तुम तो फेल हो गए, बिना एग्जाम दिए तो पक्का फेल हो गए, ट्राई करोगे तो आज नहीं तो कल या तो उस एग्जाम में सक्सीड करोगे या कोई धारा निकल आएगी। अगर तुम करोगे नहीं प्रयास तो कई प्रयासों के बाद मेनी अप्रोक्सीमेशन जस्टिफाई द ग्रेट एंडेवर। तो माँ बताती कि कई इंटरमीडिएट स्पेसीज आएंगी, एक दिन में सडनली सुपरमेंटल बीइंग जगमग जगमग नहीं दिखाई देने लगेगा, बहुत सारे हल्के से जुगनू तारे दिखाई देंगे, उसके बाद में लास्ट में सूर्यालोकित गोल्डन बीइंग। तो लाइफ ओनली वॉज माई ब्लाइंड अटेम्प्ट टू लव, अर्थ सॉ माई स्ट्रगल, हेवन माई विक्ट्री, ऑल शेल बी सीज्ड ट्रांसेंडेड, देयर शेल किस कास्टिंग देयर वेल्स बिफोर द मैरिज फायर, द इटर्नल ब्राइड ग्रूम एंड द इटर्नल ब्राइड। वाह क्या बात है, ये कौन है इटर्नल ब्राइड ग्रूम ब्राइड? इट्स अर्थ एंड हेवन। तो वो छुपे छुपे रहते हैं, जैसे पुराने समय में होता था ना, पहले रोका होता था, दिखा नहीं कौन है, ऐसे पुराने समय में शादी होती थी, लास्ट में देखते थे। अब उसमें अब वो कहते लॉटरी लेकिन वो लॉटरी बड़ी डिसेप्टिव होती थी, आप बाहर से लग रहा है कि ये लॉटरी लगी लेकिन आपको पता नहीं है अभी क्या रहस्य खुलने वाले हैं। बट दैट इज हाउ इट वॉज कि बिफोर द फायर सडनली आप देखते हो ब्राइड ग्रूम और ब्राइड अपना अपना घूंघट उठाते हैं, अभी तो पहले ही घूंघट उठाते हैं, बाद में अब तो वो फायर वायर की जरूरत नहीं है, हम लोग बहुत एडवांस हो गए, पर अंदर का फायर तो अभी भी है ना। बात तो वो सत्य तो अंदर का है, बाहर का नहीं है, तो बाहर तो उसको रिप्रोड्यूस करने की चेष्टा होती है। फॉर नाउ एट लास्ट ऑल शेल बी सीज ट्रांसेंडेड, देयर शेल किस कास्टिंग देयर वेल्स बिफोर द मैरिज फायर, द इटर्नल ब्राइड ग्रूम एंड इटर्नल ब्राइड। अब देखिए यहां पे ये भी है, शेरविन ने अभी बताया ना कि इवन अर्थली जॉयस कैन बी अपलिफ्टेड। अब ये एक एग्जाम्पल है, शेरविन की कितनी इमेजेस हैं जो एकदम अर्थली इमेजेस हैं, पर श्री अरविंद ने उन इमेजेस में क्या देखा है, द किस ऑफ द ब्राइड ग्रूम एंड द ब्राइड ही हैज अपलिफ्टेड टू मीन हेवन एंड अर्थ। और ये ट्रूथ है जो अर्थ पे मैनिफेस्ट होना चाहिए, लेकिन वो अभी नहीं है। पुराने समय में जो मैरिजेस होती थी तो पुरुष को कहा जाता था, आई थिंक इट वॉज रई द स्काई एंड अर्थ वॉज अर्थ, देर वॉज अ टर्म फॉर इट, तो हेवन एंड अर्थ मतलब जो पुरुष होता था वो आकाश तत्व का प्रतिनिधित्व करता है और जो पृथ्वी है वो फेमिनाइन नेचर को प्रतिनिधित्व करती है। अब देखिए क्या सिंबल ढूंढा है, आकाश और पृथ्वी का मिलन एक्चुअली बड़ा अद्भुत है। एक्चुअली आकाश मिलता है, आकाश ही है ना, हम कहते हैं आकाश वहां है, लेकिन अगर हम स्पेस के पॉइंट ऑफ व्यू देखें वो एकदम धरती के अंदर भी है, लेकिन आकाश क्या है, वो बीच में एक आध कुछ कलर ले आता है बेचारा सूर्य के प्रताप से, लेकिन पृथ्वी आकाश की जो से जो किरणें आती हैं धरती रंगों से भर देती है। शी कंसीव्स दैट एंड दोज व्हाट शी कंसीव्स सी गिव्स मेनी मेनी ऑफस्प्रिंग्स, जिसके चलते आकाश भी मोहित होकर देखता है, अरे ये कैसे, तो पृथ्वी कहती है ये तुमसे। देखा जाए तो दैट इज, अब इसके कई सिंबल्स हैं, एक सिंबल है आप देखिए ये श्रृंगार रस, तो इसको आप ले जा सकते हैं अल्टीमेट, फूल हैं, फूल कैसे खिलते हैं, कलियां अगर आप देखें तो सूर्य की किरणें आकर स्पर्श करती हैं, तो इट्स लाइक ए किस, और वो किस के कारण फूल खिल उठते हैं और खिल के किस किसकी ओर जाते हैं, सूर्य की ओर, वो अपने आप को ऑफर करते हैं। इट इज सो, यही सिंबल है पूरी सृष्टि में। तो हम लोग जब इन चीजों को ऐसे नहीं, हम लोग विक्टोरियन मॉरेलिटी और इन सब में जब देखते हैं तो देन इट इज, और वो एक फेज है, जरूरी भी है मनुष्य के लिए, इट इज नॉट दैट वन शुड जस्टिफाई एनीथिंग, बट लेकिन हमें पता होना चाहिए कि हर चीज के पीछे एक दिव्य सत्य खड़ा हुआ है। आगे माँ बता रही हैं, द हेवेंस एक्सेप्ट आवर ब्रोकन फ्लाइट्स एट लास्ट। एक जन्म में लैला मजनू की कहानी हो गई, श्री फरहाद हो गए, रोमियो जूलियट हो गए, कभी मिले नहीं, इट्स ए ट्रेजेडी। दूसरे लाइफ में मिले एंड दैट वाज द ट्रेजेडी। तीसरे लाइफ में मिले एंड दैट वाज द जॉय। तो मतलब तीन लाइफ तो मैंने क्विक कर दिया, बट इट इज लाइक दैट ब्रोकन फ्लाइट्स। एक जीवन में सक्सीड नहीं कर पाया, आपने अभिप्सा करी, प्रयास किया, नहीं सक्सीड हुआ, लेकिन प्रयास तो वर्थवाइल था. टू ट्राई समथिंग विच इज हाई एंड ब्यूटिफुल इज मच बेटर देन नॉट टू ट्राई एट ऑल. तो कोशिश की, नहीं हुआ, ब्रोकन फ्लाइट्स, बट हेवेंस ने एक्सेप्ट कर ली कि ठीक है, आई हैव नोटेड इट इन अवर रजिस्टर. अगली बार तुम जब आओगे तो तुम्हें स्ट्रॉन्गर विंग्स और बेटर फ्यूल, बेटर मेक दे करके भेजूंगा. ऑन अवर लाइफ्स प्राउ दैट ब्रेक्स द वेव्स ऑफ टाइम, नो सिग्नल लाइट ऑफ होप हैज ग्लीम्ड इन वेन. कोई भी आशा ऐसी नहीं है जो इन वेन है. लेकिन मनुष्य को तरीका पता होना चाहिए और उसको प्रयास गिव अप नहीं करना चाहिए, और उसको वन शुड नो द वे. और वो वे यही है कि ह्यूमन लव मस्ट फर्स्ट चेंज इट वेज टू वेज डिवाइन. नहीं तो संभव नहीं है. तो उसको पता होना चाहिए कि हाउ टू चेंज. और उसका पूरा प्रोसेस बता दिया है, मिस्टिक ट्रांसफिगरेशन, स्वीट एनिमल्स डिजायर, स्वीट मैडनेस, कंपेनियनशिप टू भक्ति, फाइंडिंग गॉड, देन द, ये पूरी साइकिल है. तो अगर उसको रास्ता पता है और अगर वो ट्रांसम्यूट कर सकता अपने हृदय का प्रेम भगवान के प्रेम में, तब ये संसार में ये चीज स्थापित हो सकती है. सो सिग्नल होप, होप तो वहीं से हुआ था ना, वो अल्टीमेट पॉसिबिलिटी ये होती है. इसी को हम लोग, लास्ट टाइम भी हम लोगों ने इसकी बात की थी, मानुषिर भाजन, जहाँ तीन स्टेज बताते हैं नलिनीदा. फर्स्ट स्टेज, व्हेन वी लव इग्नोरेंटली, तो इग्नोरेंट लव इज इकोइस्टिक लव. मुझे क्या कर रहे हो, मुझे तुमसे क्या मिला तब मैं प्यार करूँ, या मेरा अपना स्वार्थ. फिर होता है कि आई गिव एंड टेक, वो दूसरा लेवल है. तीसरा होता है कि वन गिव्स लव, वन डजंट वांट एनीथिंग इन रिटर्न. लेकिन भाई एक्सेप्ट तो करो, एक्नॉलेज तो करो, व्हाट्सएप मैसेज का रिप्लाई तो करो, ब्लू टिक तो होना चाहिए ना कम से कम. ब्लू टिक तो होना चाहिए कि भाई एक्सेप्टेड द मैसेज, है ना. कॉल करे तो उठा लिया, एक्नॉलेज. अब उसके मॉडर्न वर्जन है ना ये, पुराने समय में ऐसे नहीं था. पुराने समय में कहना होता था कि लुक हियर, एक्नॉलेज. उसके आगे आप चले जाते हो, आपका स्वभाव है प्रेम करना, लेकिन डोंट डू इट यू नो वेयर इट इज अनवांटेड. सो नहीं तो यू, द लाइन बिटवीन वन हु लव्स एंड वन हु स्टॉक्स इज वेरी वेरी थिन. तो एनीवे, सो वन ट्राइज एंड गोज थ्रू ऑल दिस प्रोसेस टिल ए टाइम कम्स व्हेन वन लर्न्स टू लव ट्रूली, ब्यूटिफुली, डिवाइनली. तो ये सारी ये प्रोसेस है, उसकी एक कड़ी है. तो सावित्री ने संक्षेप में मृत्यु को, डेथ को पूरा वो बता दिया, इवोल्यूशनरी प्रोसेस. इसी का विस्तार अब वो नेक्स्ट कैंटो में करेंगी. नमस्ते.